नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। जीएसटी अधिकारियों ने कर चोरी के मामले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अभी तक 1,00,000 करोड़ रुपए के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। हालांकि अधिकारी ने कहा कि 1 अक्टूबर के बाद से भारत में पंजीकृत की गई विदेशी गेमिंग कंपनियों का कोई डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन किया है, जिसे 1 अक्टूबर से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। जीएसटी परिषद ने अगस्त में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग मंच पर लगाए गए दाव के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। अधिकारी ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक जीएसटी अधिकारियों द्वारा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के नोटिस भेजे गए। ड्रीम इलेवन जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग मंच और डेल्टा कॉर्प जैसे कैसिनो संचालकों को करों के कथित पूर्ण भुगतान न करने के लिए कारण बताओ नोटिस मिले हैं। दूरसंचार प्रमुख कंपनी रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि कंपनी ने भारत में 85% 5G नेटवर्क तैनात कर दिया है और वह हर 10 सेकंड में एक 5G सेल तैनात करने की क्षमता रखती है। ब्रॉडबैंड स्पीड व क्वालिटी मापने वाली कंपनी ओकला द्वारा जारी एक बयान के अनुसार रिलायंस जियो के चेयरमैन ने कहा कि कंपनी ने दिसंबर 2023 की तय समय सीमा से पहले पूरे देश में 5G नेटवर्क का विस्तार कर दिया है। आकाश अंबानी ने कहा, मुझे ट्रू 5G रोल आउट की हमारी गति पर काफी गर्व है। आज हमने दिसंबर 2023 की अपनी तय समय सीमा से पहले पूरे देश में मजबूत ट्रू 5G नेटवर्क का विस्तार किया। भारत में संपूर्ण 5G तैनाती का 85% जियो द्वारा किया गया है। हर 10 सेकंड में एक 5G सेल तैनात किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार देश भर में 5G के लिए 3.38 लाख से अधिक बेस स्टेशन तैनात किए गए। ओकला ने रविवार को कहा कि जियो भारत में नंबर एक नेटवर्क के रूप में उभरा है। उसने बाजार में मोबाइल नेटवर्क के लिए ओकला द्वारा दिए जाने वाले सभी 9 स्पीड टेस्ट पुरस्कार जीते हैं। इसमें 5G नेटवर्क के सभी पुरस्कार शामिल हैं। पीरामल समूह की कोष प्रबंधन कारोबार इकाई ने इलेक्ट्रिक बस विनिर्माता PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी सॉल्यूशंस में 250 करोड़ रुपए का रणनीतिक निवेश किया है। बस विनिर्माता कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी ने बयान में कहा कि इस राशि को कंपनी के कारोबार विस्तार और अन्य मदों में खर्च किया जाएगा। बयान के अनुसार इस कोष का उपयोग रणनीतिक रूप से नवीन समाधान विकसित करने, कंपनी की उत्पादन क्षमताओं में तकनीकी प्रगति लाने और इसके संचालन को बढ़ाने में करने की योजना है। PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी ने कहा कि ये निवेश पीरामल अल्टरनेटिव्स के परफॉर्मिंग क्रेडिट फंड के माध्यम से आया है। कंपनी ने कहा कि उसे PCF से पहला निवेश परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के रूप में मिला है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कुछ समय पहले गठित भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के प्रतीक चिन्ह एवं वेबसाइट की बृहस्पतिवार को शुरुआत करेंगे। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को ये जानकारी दी गई। इसके मुताबिक शाह सरकारी क्षेत्र के माध्यम से उन्नत एवं पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर आयोजित एक संगोष्ठी में BBSSL के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। इस संगोष्ठी में BBSSL के उद्देश्यों, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से बीज उत्पादन के महत्व और फसलों की उत्पादकता एवं पोषण में बीजों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा छोटे एवं सीमांत किसानों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका पर भी गौर किया जाएगा। BBSSL सहकारी क्षेत्र के माध्यम से बीजों के प्रसंस्करण और विपणन के साथ उन्नत एवं पारंपरिक बीजों के अनुसंधान और उत्पादन के लिए एक प्रमुख संगठन के रूप में कार्य करेगा। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का IPO 31 अक्टूबर को खुलेगा और 2 नवंबर को बंद होगा। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के पास मामार्थ और डर्मा कंपनी जैसे FMCG ब्रांड का स्वामित्व है। रेड हेरिंग दस्तावेजों के अनुसार एंकर निवेशक 30 अक्टूबर को बोली लगा पाएंगे। IPO में 365 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर और प्रवर्तकों तथा अन्य बिक्री शेयर धारकों के 4.12 करोड़ इक्विटी शेयर की बिक्री शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक अशोक गाडगिल और डॉक्टर सुब्रा सुरेश सहित कई अन्य लोगों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार के लिए प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया। अग्रणी अमेरिकी नव प्रवर्तकों को प्रदान किया जाने वाला ये पुरस्कार उन लोगों के कार्य को मान्यता देता है जिन्होंने अमेरिका के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में स्थायी योगदान दिया है और देश के प्रौद्योगिकी कार्यबल को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। बाइडेन ने मंगलवार को कई लोगों को प्रतिष्ठित विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पदक प्रदान किया, जिनमें सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल शामिल थे। नेशनल साइंस फाउंडेशन के पूर्व प्रमुख सुब्रा सुरेश ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। दूरसंचार विभाग ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह जानकारी दी। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। DOT ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन करेंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।